अरुणिमा हैरानी से अपनी माँ को देख रही थी। शारदा जी ने अरुणिमा के गाल पर एक थप्पड़ मारा था और वो गुस्से में अरुणिमा को देख रही थी। उनके मन में यही चल रहा था कि इस पागल लड़की की वजह से जो उनकी बची हुई जमा पूंजी है, आस्तिक उसे भी बर्बाद कर देगा। जब वो शारदा जी की कंपनी खड़े खड़े किसी और के नाम कर सकता है, तो फिर आस्तिक के लिए शारदा जी को पूरी तरह से बर्बाद करना कौन सी बड़ी बात होगी। ले देकर उनके पास कम से कम एक नौकरी तो है, लेकिन लगता है अब अरुणिमा की वजह से वो नौकरी भी हाथ से चली जाएगी। और यहाँ पर दूसरी जगह काम मिलने में शारदा जी को कितनी दिक्कत आएगी, क्योंकि अब तो सबको पता चल चुका है कि शारदा जी आस्तिक की सास हैं। एक तरफ उन्हें अपना स्टेटस मेंटेन करना है और दूसरी तरफ जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना है। लेकिन अरुणिमा का ये गलत फैसला शारदा जी को भारी पड़ रहा था। उन्होंने गुस्से में अरुणिमा को देखकर कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? 2 महीने हुए नहीं शादी को और तुम मायके में बैठने की बात कर रही हो? क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें? जहां तक मुझे लगता था, मैंने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं और तुम्हें हमेशा यही बताया है कि घर जोड़ कर रखना चाहिए, पर तुम तो अपने ही हाथों से अपना घर तोड़ने पर तुली हुई हो। ऊपर से मुझसे उम्मीद लगा रही हो कि मैं एक शादीशुदा बेटी को अपने घर वापस रखूंगी? 2-4 दिन के लिए रहने आई तो शायद बात अलग थी, पर तुम तो यहां पर हमेशा के लिए आई हो। सालों साल इंसान एक दूसरे के साथ रहता है, तब कहीं जाकर उनका रिश्ता समाज में टिक पाता है, और तुम तो 2 महीने में ही हार मान गई, अरुणिमा रोते हुए कहती है। कौन सा रिश्ता और कैसे निभाऊं मैं ये रिश्ता? रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, पर वो इंसान रिश्ता निभाने लायक नहीं है। देखिए बीवी के नाम पर उसने मेरे साथ क्या किया है। ये कहते हुए अरुणिमा ने अपना आंचल अपने सीने से हटा दिया। शारदा जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अरुणिमा के सीने पर और उसके कमर पर कई जगह पर काटने के और नोचने के निशान थे। कुछ निशान पुराने हो गए थे तो कुछ ताज़ा थे, कुछ नीले पड़ गए थे तो कुछ बैंगनी। मिश्री ने तो ये देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसके भी आंसू नहीं रुक रहे थे अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर। अरुणिमा ने रोते बिलखते हुए कहा, देख रही हैं आप मेरे शरीर पर ये निशान? ये निशान मुझे उस जानवर ने दिए हैं जो मेरा पति होने का दावा करता है। वो हर दिन मुझे एक नई सजा देता है, वो भी उस गलती की जो मैंने की भी नहीं है। वो हर रात किसी मॉन्स्टर की तरह मेरे शरीर को नोचता रहता है। वो पागल इंसान है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो एक अच्छा राजा नहीं है या वो एक अच्छा भाई नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा पति बिल्कुल नहीं है। एक कमरे के अंदर वो कुछ और बन जाता है। मैं हर रात उसके लिए एक सामान बन जाती हूँ जिसे वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। माँ, वो इंसान पागल है, उसे किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, उसे दिमाग की बीमारी है। ये कहते कहते अरुणिमा घुटनों के बल बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी माँ उससे ये सब भी कहेगी। उसे तो लगा था इस पूरी दुनिया में अगर कोई उसे समझेगा तो वो सिर्फ उसकी माँ ही हो सकती है। अरुणिमा के शब्दों से तो शारदा जी भी एक पल के लिए हैरान हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने अपना माइंड गेम खेलना शुरू किया और उन्होंने अपने मन में कहा, ये इस तरीके से नहीं मानेगी, मुझे इसे प्यार से समझाना होगा। अगर जोर जबरदस्ती करूंगी तो बात और बिगड़ जाएगी। शारदा जी अरुणिमा के सामने बैठती है और उसका चेहरा हाथों में लेते हुए अपने हाथों से उसके आंसू पोंछती है। अरुणिमा अभी भी रोए जा रही थी, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। शारदा जी ने धीरे से अरुणिमा के आंचल को उठाकर वापस उसके सीने को ढकते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है ये सब देखकर मुझे अच्छा लग रहा है? नहीं अरु, मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन बेटा मैं मजबूर हूँ। जरा सोचो, हमारे पास कोई मर्द तो है नहीं जो हमें सहारा दे सकता है। मैं हूँ और तुम्हारी बहन है। औरतों के लिए इस दुनिया में बिना मर्द के सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। हमारे जो हालात हैं उसकी वजह से मैं खुद मिश्री को लेकर काफी परेशान हूँ। ऐसे में मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती हूँ, अरुणिमा हैरानी से कहती है। हालात? कैसे हालात? मैं कुछ समझी नहीं। शारदा जी एक गहरी सांस छोड़ती हैं और कहती हैं, पता नहीं राजा साहब को क्या परेशानी है। उन्होंने हमारी कंपनी के सारे शेयर्स बेच दिए हैं और मुझे मेरी ही कंपनी से बर्खास्त कर दिया है। मैं एक छोटी सी कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करती हूँ, सिर्फ जिंदा रहने लायक ही काम कर रही हूँ। और अब तो एक और नई मुसीबत आ गई है, मिश्री को स्कूल से निकाल दिया गया है। मिश्री के इस साल बोर्ड के एग्जाम है। जरा सोचो, अगर वो अपना बोर्ड नहीं दे पाएगी तो उसका पूरा करियर खराब हो जाएगा, अरुणिमा हैरानी से कहती है। ये आप क्या कह रही हैं माँ? ये कैसे हो गया ये सब अचानक, और आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? शारदा जी घड़ियाली आंसू निकालते हुए कहती हैं, क्या फर्क पड़ता है कि ये सब कैसे हो गया है? फर्क तो ये पड़ता है कि राजा साहब ये सब कर क्यों रहे हैं? हम भी तो राजा साहब का ही परिवार है, फिर वो हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? अरुणिमा, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि राजा साहब हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? अरुणिमा हैरानी से नामे सिर हिलाती है और कहती है, नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरुणिमा हैरानी से कहती है, लेकिन वो आपकी कंपनी के शेयर कैसे बेच सकते हैं? वो सारे शेयर्स तो आपके नाम थे ना? शारदा जी रोती है
और ना मैं सिर हिलाते हुए कहती, नहीं, मैं बस उन शेयर्स की केयरटेकर थी। वो सारे शेयर तुम्हारे नाम थे और शादी के बाद उसने शायद तुमसे शेयर मार्केट के पेपर पर साइन करवा लिए थे और कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी पर भी। अरुणिमा को याद आता है कि शादी के कुछ दिन बाद आस्तिक ने उसे एक पेपर पर तो साइन करवाया था, लेकिन अरुणिमा ने जब उस पेपर को पढ़ना चाहा तो आस्तिक ने अरुणिमा को एक थप्पड़ मारते हुए ये कहा था कि अगर आस्तिक अरुणिमा से उसके डेथ सर्टिफिकेट पर भी साइन करवाएगी तो अरुणिमा को हंसते हंसते साइन करना होगा, उसे सवाल पूछने का हक नहीं है। अरुणिमा हैरान थी। तभी शारदा जी ने अपने आंसुओं को तेज करते हुए कहा, मुझे पता है वो ये सब क्यों कर रहा है, तुम्हारी वजह से। अरुणिमा हैरानी से अपनी माँ को देखती है और कहती है, मेरी वजह से?